समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार सुप्रभात श्रोताओं। एप्रिशिएशन प्रशंसा किसी का भी दिन बना सकती है और यहाँ तक कि कईयों के जीवन में इतना बदलाव ला सकती है कि वो अपना पूरा जीवन बदल देते हैं एप्रिशिएशन के जरिए। क्यों रेनू, कुछ इस तरीके से होता है हमारे जीवन में कि जब भी कोई हमें किसी चीज के लिए प्रेज करता है तो काम करने का जो उत्साह होता है वो दोगुना हो जाता है। तो आज इसी शुभ विचार के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं आकाशवाणी गोल्ड पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे में।
Yes, hello Divya and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. And dear listeners, we bring you a daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 28th of February. So, Divya, bahut kuch hone wala hai aaj ke din mein.
Ji, bilkul.
So, let's first begin with the headlines.
Ji, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत की दो दिन की यात्रा पर कल दिल्ली पहुंची। उनके साथ यूरोपीय संघ के 27 में से 22 आयुक्त भी आए हैं। यूरोपीय देशों के कॉलेज ऑफ कमिश्नर की यूरोप से बाहर ये पहली भारत यात्रा है। इन सभी आयुक्तों ने पिछले वर्ष दिसंबर में कार्यभार संभाला था। इस यात्रा से भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और तकनीक समेत कई क्षेत्रों में भारत और यूरोप के बीच गहरे साझेदारी है और ये रिश्ते बीते कुछ वर्षों से और मजबूत हुए हैं। सामान के व्यापार के मामले में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार 90% बढ़ा है। 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ सामानों का द्विपक्षीय व्यापार $135 बिलियन रहा। इसके अलावा नवीकरणीय और हाइड्रोजन क्षेत्र में भारतीय और यूरोपीय कंपनियों के बीच सहयोग काफी मजबूत है। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी यूरोपीय संघ शामिल हो गया है, जो कि दोनों देशों के बीच गहराते रिश्तों को दर्शाता है। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
Prime Minister Narendra Modi will participate in Jahan-e-Khusro 2025 at Sundar Nursery in New Delhi this evening. Organized by the Rumi Foundation, the festival will celebrate its 25th anniversary this year. It was started by renowned filmmaker and artist Muzaffar Ali in 2001. During the festival, the Prime Minister will also visit the TS Bazaar, which will feature one district, one product crafts and various other exquisite art crafts from across the country. So Divya, before we listen into this beautiful song sung by Ustad Aslam Khan, which was written by हजरत अमीर खुसरो, थोड़ी सी दो लाइनें जो हम सुनाने वाले हैं वो है, सकल बन फूल रही सरसों दैट सेलिब्रेट्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। और वो आजकल जो हो रहा है हमारे साथ, जो है सीजन हमारे साथ, हमारे पास आ गया है स्प्रिंग का, उसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुली जो है ये हमारे लिए सूट करता है। इट डिस्क्राइब्स द सीजन ऑफ स्प्रिंग, द टाइम फॉर न्यू फ्लावर्स एंड हार्वेस्ट। सो लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय उस्ताद असलम खान।
फूल रहे सर सो सकल बन 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 अंगना।
एंड दिव्या, ऑल्सो फागुन का महीना लग चुका है, इसीलिए हम चारों तरफ जो है सरसों भी देख रहे हैं
और अब रंगों का अब मौसम आने वाला है
और आ चुका है। मैंने अभी फिलहाल शुरू में थोड़े दिन पहले आम के पेड़ पे भूर आता हुआ भी देखा है।
बिल्कुल बिल्कुल। और वित्त सचिव तोहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 3 साल तक इस पद पर रहेंगे और माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सेबी के नए अध्यक्ष में तोहिन कांत पांडे की नियुक्ति को मंजूरी दी है।
In Himachal Pradesh, several roads were closed to traffic as light to moderate snow continued in the higher reaches and intermittent rains lashed the middle and lower hills. The National Highway 5 near Narkanda in Shimla district has been closed due to slippery conditions following heavy snowfall. A total of 12 roads are closed in Shimla district. In Kullu district, a flash flood threat was reported in Tosh village. The weather department issued an orange warning for avalanche risk in Lahaul and Spiti, Chamba, Kinnaur and areas above 2,300 meters. This warning will remain in effect till 5 p.m. today. The public is advised to avoid unnecessary travel, especially in high altitude areas prone to avalanches. And moving on to Bihar, an earthquake measuring 6.1 on the Richter scale hit Nepal in early hours today. The earthquake jolted Nepal at 2:36 a.m. Indian time. National Earthquake Monitoring and Research Center said that the epicenter was at Bhairav Kunda in Sindhupal Chowk district, about 65 kilometers east of the capital, Kathmandu. There have been no reports of any damage, injuries or loss of life. Many parts of Bihar, West Bengal and Sikkim also experienced tremors at around 2:37 a.m. In Bihar, tremors were felt in Darbhanga, Samastipur, Saran and adjoining areas.
और अगली जो खबर है वो भी बिहार से ही है रिनु
जी.
और बिहार के सारण जिले में स्थित छपरा में व्यवसायियों, स्थानीय व्यापारियों और युवाओं के एक दल ने स्वैच्छिक आधार पर रोटी बैंक नाम की एक अनोखी पहल चलाई है. रोटी बैंक गरीबों, दैनिक मजदूरों, पटरी पर रहने वालों और कम सुविधा वाले लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराता है. वाराणसी में इसी नाम के संगठन से प्रभावित होकर ये रोटी बैंक बिहार में पिछले 7 वर्षों से निर्बाध रूप से भोजन उपलब्ध करवा रहा है. आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट.
छपरा शहर में रात होते ही आश्रयहीन, गरीब और भूखे लोगों का सहारा बनकर आते हैं रोटी बैंक के सदस्य. यह 10 से 15 कामकाजी लोगों, व्यवसायियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का संगठन है जो श्रमदान और एक दूसरे की मदद से संसाधन जुटाकर चलता है. आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संगठन के संचालक रविशंकर उपाध्याय बताते हैं कि सेवा की भावना सभी को बांध कर रखती है.
शुरुआती दौर में तो ठीक ठाक कम पैकेट्स था, संख्या जब बढ़ने लगा तो फिर हुआ कि कैसे मैनेज किया जाए, तो अपने सभी सदस्यों के घर से बनवा के खाना लाने लगे. इस प्रकार से हम लोगों ने कारवा को आगे बढ़ाया.
रोटी बैंक का कार्य क्षेत्र का यह दायरा भले ही छोटा है लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है. छपरा से पवन कुमार सिंह के साथ धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना.
और रेनु, जैसे हम बात कर रहे थे कि अब फागुन आ चुका है तो क्योंकि होली का समय नजदीक है तो बहुत से लोग जो प्रवासी हैं अपने अपने शहरों से, अपने अपने गांवों से आकर के शहरों में रह रहे हैं और कुछ शहर के लोग हैं
वापस जाना
चाहते हैं त्योहार
के लिए.
तो उनके लिए त्योहार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे ने प्रमुख मार्गों पर 48 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है. ये रेलगाड़ियां मुंबई, पुणे जैसे प्रमुख शहरों से महू, दानापुर, वाराणसी, समस्तीपुर, कन्याकुमारी और तिरुवनंतपुरम सहित अन्य गंतव्य स्थानों के बीच चलेंगी. विशेष रेलगाड़ियां उच्च मांग वाले मार्गों पर चलाई जाएंगी. मध्य रेलवे की होली विशेष रेलगाड़ियों की कुल संख्या अब 76 हो गई है. इन विशेष रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण सभी भारतीय रेलवे आरक्षण केंद्रों और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन टिकट कार्यालयों में शनिवार से शुरू हो गए हैं.
एंड लास्ट हम चलते हैं अब स्पोर्ट्स की तरफ.
जी,
इन द आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी अफगानिस्तान विल प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दिस आफ्टरनून. The match will be held at the Gaddafi Stadium in Lahore from 2:30 p.m. IST. Yesterday, the match between hosts Pakistan and Bangladesh at the Rawalpindi Cricket Stadium was called off without a ball being bowled due to incessant rain. Hosting an ICC tournament for the first time in 29 years, Pakistan thus ended their disastrous campaign without registering a single victory. Bangladesh too concluded their journey without a win. One point will be shared by both teams.
और अब रुक करते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचारों का. तो सबसे पहले चलते हैं दिल्ली. दिल्ली सरकार आज विधानसभा में आम आदमी की तत्कालीन सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की एक और रिपोर्ट पेश करेगी. रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के बारे में है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रिपोर्ट की प्रतियां विधानसभा पटल पर रखेंगी.
And moving on to Chennai Metro, the National Institute of Fashion Technology, Chennai, with the active support of the Ministry of Textiles, will be organizing a craft bazaar to celebrate and promote the rich handloom and handicraft heritage of Tamil Nadu. NIFT Chennai has developed and implemented craft cluster initiative programs that aims to provide continuous exposure to the handloom and handicraft clusters. The institute will hold Pokisham Craft Bazaar 2025, a unique initiative to celebrate and promote the rich handloom and handicraft heritage of Tamil Nadu between February 28, 2025 and March 1, 2025 at the NIFT Chennai campus. To support their efforts, NIFT Chennai is offering artisans free stalls, wage loss compensation, travel allowance, lodging and boarding at no cost. More news from Chennai. The State Transport Department will operate nearly 627 special buses to clear extra rush of passengers from today to the 2nd of March. They will be operated from Kalainagar Centenary Bus Terminus at Kilambakkam, Koyambedu and Madhavaram Bus Terminus. Arrangements have been made for crowd control in these places. The government has also introduced a mobile app to enable booking the tickets.
Aur ab aapko le chalte hain Delhi ke kuch aur khabron par. नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो ने गुरुवार को नई दिल्ली में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत की. उन्होंने विद्यार्थियों के साथ अपना अनुभव साझा किया और उनको अंतरिक्ष अन्वेषण में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने विद्यालय की सुविधाओं का भी जायजा लिया, जिसमें एआर वीआर लैब, अटल टिंकरिंग लैब, भाषा प्रयोगशाला आदि शामिल हैं. छात्रों से संवाद में उन्होंने भारत के चंद्रयान 3 मिशन की प्रशंसा की. और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कल भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य तथा संगीत महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन किया. हमारे संवाददाता ने बताया है कि वसुधैव कुटुंबकम नामक ये उत्सव सांस्कृतिक सद्भाव और कलात्मक उत्कृष्टता का एक शानदार प्रदर्शन है.
मूविंग ऑन टू बेंगलुरु, द कर्नाटका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नैसकॉम यस्टरडे इन बेंगलुरु. Aimed at fostering innovation and intellectual property growth within the state's burgeoning tech sector. This will lead to enhanced IP awareness, protection and commercialization within the IT and IT's industry in Karnataka. This is meant to strengthen the state's position as a leading innovation hub, boost IP creation and drive economic growth through enhanced technology development and commercialization.
और अब चलते हैं महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को मुंबई के राजभवन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य के 6 संभागीय आयुक्तों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक बैठक की. राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए. राज्यपाल ने संभागीय आयुक्तों को पेसा क्षेत्रों वाले जिलों में एक मॉडल आदिवासी गांव बनाने को कहा. उन्होंने राज्यों में वन अधिकार अधिनियम 2006 को समयबद्ध तरीके से लागू करने का आह्वान किया. महाराष्ट्र की अटल पहल के लिए 1,00,000 से अधिक छात्रों ने किया गया एक विशेष कार्यक्रम है, और जिसका उद्देश्य छात्रों को मॉक टेस्ट और साइकोमेट्रिक मूल्यांकन के माध्यम से प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है. महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने गुरुवार को कहा कि राज्य के सभी बस स्टैंड और डिपो पर तुरंत सुरक्षा ऑडिट किया जाना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिया कि बस स्टैंड और डिपो पर खड़ी डी रजिस्टर्ड बसें और परिवहन कार्यालयों द्वारा कार्रवाई में जब्त किए वाहनों को 15 अप्रैल तक हटा दिया जाना चाहिए. महिला यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंत्री सरनाईक ने बस स्टैंड पर महिला सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए. मंगलवार को पुणे के स्वर्गेट बस डिपो में खड़ी राज्य परिवहन बस के अंदर 26 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार की घटना के बाद मुंबई में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन के कार्यालय में बस स्टैंड पर महिला यात्रियों की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक हुई. बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य भर के सभी एसटी बस स्टैंड और डिपो में एआई तकनीक पर आधारित एक अपडेटेड सीसीटीवी सिस्टम स्थापित किया जाना चाहिए.
Moving on to Hyderabad Metro, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विल बी इनॉग्रेटिंग द विज्ञान वेब ऑफ 2025, अ डिफेंस एंड एरोनॉटिकल एग्जीबिशन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल साइंस डे लेटर टुडे. India's defense might, including the recently tested hypersonic missile to the majestic battle tank Arjun and drones and radars and initiatives into the future warfare, will be on display at the sprawling Gachibowli Stadium in Hyderabad. The exhibition will be open from today till the 2nd of March.
और अब अगली खबर कोलकाता से.
जी.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे. वे बीरभूम जिले में तारापीठ मंदिर जाएंगे. बाद में वे गौड़ीय मिशन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सी डी आनंद बोस भी मौजूद रहेंगे. और अब महानगरों में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं. राजधानी दिल्ली में गरज के साथ बारिश और आंधी की संभावना है. आज अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है. कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
And Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and the maximum will be around 32 degrees. Bengaluru is expected to have mainly clear sky. The minimum temperature was 18 degrees Celsius and the maximum will be around 32 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius.
और देश में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है. इस दिन को विशेष तौर पर महान वैज्ञानिकों के योगदान को मान्यता देने और उन्हें नमन करने के लिए मनाया जाता है. 1928 में वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने फोटोन के बिखराव की एक घटना की खोज की, जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना गया, और इसके बाद कई वैज्ञानिक प्रयोग संभव हो पाए. इसीलिए सर वेंकट रमन के सम्मान में उनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है.
Yes, Divya, we are talking about the events that happened on this day. So on 28th of February, we are celebrating the National Science Day in the country. And as you said, this day is observed every year on 28th of February to commemorate the discovery of the Raman effect by the eminent physicist Sir C.V. Raman.
Raman effect is the change in wavelength of light that occurs when a light beam is deflected by molecules. When a beam of light traverses a dust-free transparent sample of a chemical compound, a small fraction of the light emerges in directions other than that of the incoming beam. Most of this scattered light is of the unchanged wavelength.
Sir Raman was awarded the Nobel Prize in 1930 for this groundbreaking discovery. National Science Day features a variety of theme-based science communication activities held throughout the country. Union Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, will also be attending the National Science Day 2025 celebrations today. And we have more from our correspondent.
The theme for this year's National Science Day is Empowering Indian Youth for Global Leadership in Science and Innovation for a Viksit Bharat. The day aims to spread the message of the importance of science and its application among the people. It also aims to showcase all the activities, efforts and achievements in science for the welfare of human beings, as well as the implementation of new technologies for the development of science. In its future vision, the government under its Inspire Manak scheme will expand its reach to class 11 and 12 students, ensuring that more young minds are engaged in scientific innovation at a crucial stage of their education. This initiative is expected to strengthen the country's scientific workforce and global leadership in research and development. With advancements in quantum computing, AI, geospatial technology and climate research, alongside initiatives fostering inclusivity and young talent, India is shaping a future driven by science and technology. Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
And moving on from the year 1930 back to 1827, the Baltimore and Ohio Railroad became the first steam-operated railway in the United States to be chartered as a common carrier of freight and passengers on this day. And talking about 28th of February 1922, the United Kingdom granted Egypt its independence, although the country remained under British influence. On the same day, Indian physicist C.V. Raman, as we have already spoken about him, made the groundbreaking discovery of light scattering, later named the Raman effect. In 1940, the first televised basketball game was played between Pitts and Fordham in New York City. And in 1984, King of Pop Michael Jackson won 8 Grammys at the 26th Grammy Awards.
Michael Jackson, songwriter, Billie Jean. Billie Jean, Michael Jackson.
और इतिहास में 1991 में आज के ही दिन खाड़ी में युद्ध विराम लागू हुआ। 1992 में भारत एवं ब्रिटेन के बीच आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1994 में अफ्रीका ने नामीबिया को पोर्ट एंक्लेव बालिस बे सुपुर्द किया और 1996 में क्लिंटन प्रशासन ने पाकिस्तान को $35.6 करोड़ के हथियार आपूर्ति न करने का फैसला किया। और 2008 में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आर्थिक समीक्षा संसद में पेश की।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिव्या, क्योंकि ये एक्टर मेरे दिल के बहुत करीब हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर 2016 एंड अबाउट लियोनार्डो डिकैप्रियो, हु वन हिज लॉन्ग ओवरड्यू ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर फॉर द सर्वाइवल ड्रामा फिल्म द रेवेनेंट एट द 88th एकेडमी अवार्ड्स, एंड ब्राई लार्सन वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड देयर।
लियोनार्डो डिकैप्रियो, this is the first Oscar and sixth nomination for Leonardo DiCaprio.
Thank you all so very much. Thank you to the Academy. Thank you to all of you in this room.
और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन है, जयंती है या पुण्यतिथि है।
And we are paying tributes to Dr. Rajendra Prasad, who was an Indian politician, lawyer, journalist and scholar who served as the first president of India. From 1952 to 1962, he joined the Indian National Congress during the Indian independence movement and became a major leader from the region of Bihar. A supporter of Mahatma Gandhi, Prasad was imprisoned by British authorities during the Salt Satyagraha of 1930 and the Quit India movement of 1942.
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 और 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। और भारतीय क्रांतिकारी वीर सुरेंद्र साई की भी आज पुण्यतिथि है। वो 16वीं शताब्दी में चौहान वंश के संबलपुर के महाराजा मधुकर साई के वंशज थे। वीर सुरेंद्र साई ने 1857 के विद्रोह से पहले ही विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी और विद्रोह के थम जाने के बाद भी उन्होंने इसे जारी रखा। उन्होंने संबलपुर में लगभग 1500 आदमियों की एक लड़ाकू सेना तैयार की और उन्होंने 1857 से 1862 तक अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा।
दुनिया की शान है भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है सबसे।
And today we are also paying tributes to David Garrick, better known by his stage name David Byron, who was a British singer who was best known in the early 1970s as the original lead vocalist of the rock band Uriah Heep. And Byron possessed a powerful operatic voice and a flamboyant stage presence. And here we are going to listen to this song, I Remember, sung by him.
Didn't I say just a moment ago, all of my life has been just like a show, always impatient and ready to go. I remember I've been around the world with a whole bunch of clowns, see all of the cities.
और आज पुण्यतिथि है आधुनिक योग के पिता तिरुमलाई कृष्णमाचार्य की। हठ योग और विन्यास को फिर से जीवित करने का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को आयुर्वेद की भी जानकारी थी। इलाज के लिए उनके पास आए लोगों को वो योग और आयुर्वेद की मदद से ही ठीक किया करते थे। उन्होंने मैसूर के महाराजा के राज के समय पूरे भारत में योग को एक नई पहचान दिलाई। और अब बात करते हैं जिनका जन्म दिवस है, उन प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं संपादक पंडित नरेंद्र शर्मा का आज जन्मदिन है। नरेंद्र शर्मा का जन्म 28 फरवरी 1913 में उत्तर प्रदेश राज्य के खुर्जा नगर के जहांगीरपुर नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र और अंग्रेजी में एमए किया। 1934 में प्रयाग में अभ्युदय पत्रिका का संपादन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी स्वराज्य भवन में हिंदी अधिकारी रहे और फिर बॉम्बे टॉकीज बम्बई में गीत लिखे। उन्होंने फिल्मों में गीत लिखे, आकाशवाणी से भी संबंधित रहे और स्वतंत्र लेखन भी किया। उन्होंने 17 कविता संग्रह, एक कहानी संग्रह, एक जीवनी और अनेक रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाई। उन्होंने लगभग 55 फिल्मों में 650 गीत एवं महाभारत का पटकथा लेखन और गीत रचना की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी स्वराज भवन में भी वे हिंदी अधिकारी रहे।
एंड टुडे इज आल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ यू श्रीनिवास, हु वाज एन इंडियन मैंडोलिन प्लेयर एंड कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक एंड कंपोजर। यू श्रीनिवास वाज कॉल्ड द मोजार्ट ऑफ क्लासिकल इंडियन म्यूजिक एंड ही वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी। He was awarded the Padma Shri in 1998 by the Government of India. He was also awarded the Sangeet Natak Academy Award in 2009, which is the National Academy of Music, Dance and Drama in India. And here we are listening to a performance by U. Srinivas on the electric mandolin. Today is the birth anniversary of Girish Chandra Ghosh, who was a Bengali actor, director and writer. He was largely responsible for the golden age of Bengali theatre. He co-founded the Great National Theatre, the first Bengali professional theatre company in 1872, and wrote nearly 40 plays and acted and directed in many more. And later in life became a noted householder disciple of Sri Ramakrishna. But Divya, ek aur bahut famous personality hai, unhone bahut kuch kiya hai hamare humanity ke liye, to unke bare mein hum baat karte hain. Linus Carl Pauling, who was an American chemist, biochemist, chemical engineer, peace activist, author and educator. He published more than 1200 papers and books, of which about 850 dealt with scientific topics. New Scientist called him one of the 20 greatest scientists of all time. For his scientific work, Pauling was awarded the Nobel Prize in Chemistry in the year 1954. And for peace activism, he was also awarded the Nobel Peace Prize in 1962. He is one of the 5 people to have won more than one Nobel Prize. Of these, he is the only person to have been awarded 2 unshared Nobel Prizes and one of the 2 people to be awarded Nobel Prizes in different fields, the other being Marie Curie.
और आज जयंती है प्रख्यात संगीतकार तथा गायक रविंद्र जैन की। धारावाहिक महाभारत एवं रामायण को संगीत की धुन में बांधकर घर घर पहुंचाने वाले रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी वर्ष 1944 में उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ शहर में हुआ। रविंद्र जैन हिंदी सिनेमा के ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने मन की आंखों से दुनिया को समझा। उन्हें मुख्य तौर पर भजन गायक के रूप में ख्याति मिली। उन्होंने बीआर चोपड़ा की महाभारत को भी संगीत दिया। धार्मिक धारावाहिकों के संगीत का यश तो उन्हें मिला ही, साथ ही उन्होंने कई मधुर धुनों की रचना कर कई गीतों को भी गाया। इसमें राम तेरी गंगा मैली से लेकर विवाह फिल्म तक के संगीत के जरिए उन्होंने जनमानस में अपना संगीत अमर कर दिया। उनके प्रमुख गीत हैं गीत गाता चल, जब दीप जले आना, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, अखियों के झरोके से।
गीत गाता चल, ओ साथे गुनगुनाता चल, गीत गाता चल, ओ साथे गुनगुनाता चल।
And here I would also want to say or add on, Divya, he was awarded the Padma Shri, the fourth highest civilian award of the Republic of India in 2015 for his contribution to arts. Aur ab samay ki taraf dekhe hum.
जी, और इसके साथ ही मुझे और रेनू कटारिया को दीजिए इजाजत कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की.
एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय द मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. एंड थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे.
नमस्कार.